نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سبق کا آغاز کرتے ہیں. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے آج کے سبق کا بنیادی خیال اور وہ کیا ہے کہ نشانیوں سے رب کو پہچانو. پچھلی آیات کے ساتھ اگر ہم آج کی آیات کا ربط دیکھیں تو ہم نے اس سے پیچھے والی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر پڑھا اور دیکھا کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر چھپاتے تھے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی اس کا الہ ہونا اور اس کی توحید یعنی اس کا واحد ہونا اس کا ذکر ملے گا. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ لوگ چھپاتے رہیں, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کتابوں کو پڑھ کے نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ کائنات کی کتاب کو پڑھ کے ملتا ہے. یہود اپنے دور کے مسلمان تھے, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے. اگر وہ اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں مددگار ثابت ہوتے تو وہ ساری کی ساری عزت جو کل دین محمدی کے پیروکاروں کو ملی وہ ان کو بھی مل جاتی, ان میں ان کا حصہ ہوتا. لیکن تعصب اور حسد کا برا ہو کہ انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عام کر دی تو ہمارا نام کہیں دب نہ جائے, اور وہ اسی بات جس کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پیچھے ہم بات بہت دفعہ کر چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی کڑی تھے جس سلسلے سے بنی اسرائیل نسل در نسل نبیوں کی تعلیمات کو پا رہی تھی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دیکھ کر خوش ہوتے اور آپ کا اس کام میں حصہ بٹاتے اور اپنا نصیب چمکواتے, اور انہوں نے کرنا بھی ایسے ہی تھا. اگر شیطان ان کے نفس میں یہ بات نہ ڈال دیتا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عام ہو گئی تو ہماری بات چاہے دب نہ جائے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ دوست بننے کی بجائے دشمن بن گئے, معاون بننے کی بجائے مخالف بن گئے. اب اس وقت ہم جس آیت پہ کھڑے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو سورت بقرہ کا ہم نصف ثانی پڑھیں. تھوڑی سی بات جو بہت ہی اہم ہے, ایک آیت پڑھ لوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کرتی ہوں, کیونکہ اصل میں رکوعوں کی ترتیب اور ہوتی ہے اور ہمارے سبق کی ترتیب اور ہوتی ہے. 163 دیکھیے کہ یہ پچھلے رکوع کی آخری آیت ہے, اس کو پورا کر کے آج کی جو آیت ہے اس سے انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کا رب جوڑوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور لوگوں تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. آپ کو اس پکار سے کیا میسج ملا؟ تم بھی ایک بن جاؤ, ایک رب, ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب, قبلہ بھی ایک, کعبہ بھی ایک. وہ مولانا حالی کے اشعار ذہن میں آ رہے ہیں کہ جب سب کچھ ایک ہے, کتاب ایک, رسول ایک, تو پھر کیا بڑی بات تھی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک. تو الہکم الہ واحد, توحید کائنات کی وحدانیت کی اکائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا, اس کے اور بہت سارے اینگل تو ہم پورے قرآن پاک میں پڑھتے ہی ہیں, لیکن یہاں جو ٹیکسٹ چل رہا ہے پیچھے سے بنی اسرائیل اور یہاں سے مسلمانوں کو ساتھ جوڑیں تو میسج کیا ہے کہ تم ایک بن جاؤ. کون سا الہ ہے وہ؟ لا الہ الا ہوا, اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. کیسا ہے وہ؟ ہو الرحمن الرحیم, وہ نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پاک کا آغاز ہوا تھا. وہ دن اور آج سورت الفاتحہ کی 7 اور سورت البقرہ کی 163 آیات پڑھنے کے بعد بھی آپ کو پیغام ایک ہی ملے گا کہ لا الہ الا اللہ, وہ الہ ایک ہے, اور الہ وہ جو ذات حیران کر دے, وہ ذات کہ جس کی چاروں طرف بڑائی کی باتیں ہو رہی ہوں. آپ دیکھیے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو کس روپ میں دکھایا. ایک انسان کے بھائی کئی ہو سکتے ہیں, بہنیں کئی ہو سکتی ہیں, ممکن ہے نا؟ ایک انسان کی ماموں, خالہ, پھپھی, جتنے بھی رشتے ہیں, کوئی بھی نہ ہو یا بہت سارے ہوں, دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں, لیکن ایک رشتہ ایسا کہ جو ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ ماں کا رشتہ. سوتیلی ماں بھی ہوگی لیکن اس نے اپنی کوکھ میں تو نہیں رکھا. باپ بھی سوتیلا ہو سکتا ہے, جو شفقت آپ کے باپ کے ساتھ تھی وہی آپ کے سوتیلے باپ سے بھی ملے گی, لیکن ماں पा माँ का पेट में रहना ये एक माँ के सिवा मुमकिन नहीं। जिस तरह दुनिया में ये मुमकिन नहीं कि कोई ये कहे कि मैं दो बार जन्म लिया गया, पहले एक माँ ने मुझे जन्म दिया फिर दूसरी माँ ने दिया, ये हकुकुल इबाद में से अकाई है कि माँ एक है, तो इसी तरह इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, अल्लाह भी एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद, अगर इसको इंसान महसूस करे ना तो मेरा दिल तो तन्हाई चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं अकेली हूँ और मैं बैठ के गौर करूँ कि अल्लाह ताला तू एक है, सिर्फ तेरी बातें चाहिए, सिर्फ तुझसे मोहब्बत हो तो फिर मैं दूसरों की तरफ क्यों जाती हूँ। ये है वो नुक्ता जो बंदे के दिल को सुकून देता है, इत्मीनान देता है, खुशी देता है। इसी को आप कह लीजिए अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कह दो कि दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिलता है। इसी को आप कह दीजिए इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामु ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि जिन लोगों ने अल्लाह को एक कह दिया, उसको रब कह दिया, फिर उस पे जम गए, तो उन पे फरिश्तों का नज़ूल है, सूरत हामीम सजदा में आता है। और इसी को आप कह दीजिए कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरत यूनुस में आता है कि कह दीजिए कि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त तो वो हैं कि जिनको ना कोई गम है ना कोई खौफ है। और इसी को कह दीजिए फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, 20वीं आयते कुरान की आपकी भी टिप्स पे होंगी कि जिन सब का पैगाम एक है कि अगर खुश रहना चाहते हो, मुतमईन रहना चाहते हो, अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी को जावेदां करना चाहते हो, तो फिर एक रब के बन जाओ। ये खिताब जहाँ हो रहा था वहाँ मक्का में मुशरिकीने अरब थे, एक इलाह को छोड़कर कई इलाह बना लिए थे, कोई दुख का खुदा कोई सुख का खुदा, कोई देवी दौलत की तो कोई माल की तो कोई बेटों की। और अकीदा क्या था कि इतनी बड़ी कायनात इसके इतने इंतजाम एक अल्लाह अकेला कैसे संभाल सकता है, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसको तो इन दोनों की हिफाजत और इन दोनों की निगहबानी थकाती नहीं है। जिसने इतनी बड़ी कायनात बना दी उसको चलाना क्या मुश्किल है, सच बताइए, जहाज बनाना मुश्किल है या जहाज चलाना मुश्किल है? और अल्लाह के लिए तो ना जहाज बनाना मुश्किल है ना चलाना मुश्किल है। तो लिहाजा यहाँ अक्शिर की नफी कर दी। और आप देखिए यही हमारा दीन है, आप अपना कलमा लिख के देख लीजिए इधर, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह, वही लफ्ज़ इलाह इधर है। और लफ्ज़ इलाह में छह चीज़ें होती हैं। हम तो बड़े प्यार से कलमा पढ़ते रहते हैं, सवा सवा लाख बार पढ़ के रख देते हैं पता नहीं कहाँ, और दिल की ज़मीन पे ज़रा सी भी हलचल नहीं होती। हालांकि जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये सिर्फ इलाह लफ्ज़ नहीं है, ला माबूद इल्लल्लाह, ला रज़्ज़ाक इल्लल्लाह, ला मालिक, ला हाकिम, देने वाला वो, लेने वाला वो, खुशी गम। एक बंदे को जब रब से उम्मीदें लग जाती हैं तो उसको ज़रूरत क्या है दूसरों की तरफ देखने की? लोग तब देखते हैं जब उनको इलाह लफ्ज़ बस एक रस्मी सा लफ्ज़ दिखता है, और अल्लाह ताला के नेम एंड एट्रीब्यूट्स, उसकी सिफात और उसके नामों को लोग देखते ही नहीं है। और देखिए जहाँ शिर्क होगा वहाँ एक से ज़्यादा खुदा होंगे। आप देख लीजिए पुरानी तहजीबें देख लीजिए, हड़प्पा के मोहनजोदड़ो के या किसी और आसारे कदीमा के आसार देख लीजिए, आपको वहाँ से शिर्किया चीज़ें दिखेंगी। और कुछ तहजीबें जिनको आप कह लीजिए कि आज लोगों के दिमागों पे सवार है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोमन कल्चर, मिस्री कल्चर, यूनानी कल्चर, हिंदी कल्चर, जिसमें देवों और देवियों की एक देव माला चनी हुई है, तस्बीह के दानों की तरह, वहाँ 4 करोड़ खुदाओं की इबादत हिंदू मत में होती है, पीपल के पत्ते की इबादत, बनु हनुमान की इबादत, एक एक चीज़ छोड़ते थे, हर वो चीज़ जिसने फ़ायदा दिया उसकी इबादत, और जिससे डरे नाग देवता, जिससे खौफ खाए उसकी इबादत, हत्ता कि शर्मगाह की इबादत करता है एक फ़िरका, कहते हैं कि ये दुनिया में तख्लीक का ज़रिया बनती है। लोग मखलूक में खो जाते हैं। अल्लाह का कुरान हमें क्या सिखाता है कि मखलूक में ना खो जाओ बल्कि खालिक तक पहुँचो। इसीलिए अब अल्लाह सुब्हान तआला अगली आयात में फरमाते हैं कि तुम्हें इलाह की समझ नहीं आती, तुम कहते हो बहुत सारे खुदा हैं, हालांकि सूरत अल-अंबिया की आयत 22 में आता है, आयत नंबर 22, लौकान फीहिमा आलिहतुन, और अगर इसमें होते एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा, इल्लल्लाह लफसदता, ये ज़मीन आसमान दरहम बरहम हो जाते। एक गाड़ी के दो ड्राइवर हों तो गाड़ी अच्छी चलेगी, एक चूल्हे पे दो लोग चमचा फेरने लग जाए ना हंडिया में तो वो उनके ऊपर ही गिरेगी। तो इस कायनात का निज़ाम क्यों चल रहा है कि एक چلوانے والا اور باقی اس کی ماننے والے، یہی فطرت کا اصول ہے. ایک بڑا ہوتا ہے، باقی اس کی بات مانتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ بڑا اپنی ہر خوبی کے ساتھ منوا چکا ہوتا ہے کہ میرے اندر بڑا بننے کی صلاحیت ہے. آج دین کے نام پہ بھی جو ہم مسلمانوں کے اندر ڈس آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر وجہ یہ ہے، سب کو بڑا بنا دیتے ہیں، سب بڑے ہیں. ایک بندہ شورا کا بندہ بگڑ جاتا ہے، سارے بگڑے ہوئے ہیں، وہ بات ہو ہی نہیں پاتی، کبھی کسی کا موڈ نہیں بن رہا، کبھی کسی کا نہیں بن رہا ہوتا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ایک خاموش جنگ لگی ہوئی آج دنیا میں. اور ایک اور گمان دیتے تھے، کہتے تھے دیکھو بادشاہوں کو بھی تو وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ کو بھی تو اپنے ساتھ کچھ وزیروں کی ضرورت ہے. تو وزیر کون سے بنا دیے؟ جو بزرگ مرتا گیا اس کو اللہ کا نعوذ باللہ وزیر بنا دیا. عربوں کا رواج تھا، یہاں اتنی بات کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ الانعام پہ جب پہنچیں گے، دل کھول کے آپ اس میں سنیں گے، اللہ کی آیتیں ہی آپ کو وہ سب کچھ بتا دیں گی کہ جو کچھ میری زبان سے سن کے آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا اور میری بات میں کوئی اثر بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ کی بات نہ ہو. اس لیے قرآن پڑھنا اس کا سب سے بنیادی نقطہ سمجھ لیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا پتہ دیتا ہے، اللہ کی خبر دیتا ہے. یاد رکھیے کہ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اللہ ہے، وہ تو میری فطرت بتاتی ہے، وہ تو میری فطرت نے کہا لستو بربی کو. قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. آیت الکرسی کی تفسیر میں آپ کو سمجھاؤں گی اللہ نے زندگی دی، لیکن یہاں صرف اشارتاً لکھ لیں، اللہ تو ہے، اس کو تو کافر بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سب مانتا ہے، اوپر والے کے نام پہ، کوئی پرویشور کے نام پہ، کوئی کچھ، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ الہ واحد. اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 42، اس کا ترجمہ آپ خود گھر جا کے لکھیں گے، قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اگر اس کے ساتھ دوسرے الہ ہوتے جیسے یہ کہتے ہیں، تو اذ لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، پھر تو یہ عرش والے کی طرف جا کے اس پہ چڑھائی کا ارادہ کر لیتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہے اور وہ بہت بڑا ہے. اب میں اگر صرف آپ کو آیتوں کے نمبر ہی لکھانے لگ جاؤں تو یہاں آج اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس سے اللہ کے ہونے کا اور اس کے الہ ہونے کا اور رحمان رحیم کا پتہ چلتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہے ساری کائنات اس کے ہاتھ میں، اس کے باوجود الرحمن الرحیم ہے. یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے. دنیا میں ایک ہوتی ہے پاور، ایک ہوتی ہے سپر پاور، اور اس پہ بھی چڑھ کے سپریم پاور. اور تصور میں کیا آتا ہے؟ جس کی جتنی اتھارٹی اتنا ڈنڈا سخت، جس کے ہاتھ لاٹھی اس کی بھینس، یہ کہتے ہیں نا. اللہ کی خدائی میں یہ خوبصورت چیز ہے کہ ہے وہ الہ واحد، یونیورسل حاکم، حاکم اعلیٰ، لیکن ہے الرحمن الرحیم. یہ ہے بہترین امتزاج. قہار اور جبار نہیں لکھا، کیونکہ دنیا کے خداؤں کو، بادشاہوں کو تو بڑا بننا پڑتا ہے نا، اللہ کو بننا نہیں پڑتا. جو خود بڑا ہو اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ اس کو بڑا کہے نہ کہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا، اللہ نے قرآن میں تو کہہ دیا کہ وہ ہے، ہم نے بھی مان لیا الحمدللہ، کیونکہ ہم امت مسلمہ کے افراد ہیں، دوسروں کو کیسے بتائیں؟ دل بڑا چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کو ایک ماننے لگے، ہے نا طلب یہ دل میں، تڑپ بھی ہے. کون سی کتاب ان کو پڑھائیں، قرآن دیں ان کو، انگلش کا ترجمہ دیں، نارویجین کا دیں، کیا دیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ترجمہ دینے کی ضرورت نہیں. اللہ کو کتابوں سے پڑھ کے نہیں پہچانو، بلکہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع دے. یہ ہماری ٹرانسپورٹیشن کی طرف اشارہ ہے. وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، من ماء، پانی میں سے، فاحیا اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی اترا، فاحیا اللہ من السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، من ماء، پانی، فاحیا به الارض، پھر اس کے بعد زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، خشکی کے بعد، آٹم کے بعد سپرنگ آ گیا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلائے اس میں ہر طرح کے چلنے پھرنے والے، دبیب سے، ساری لفظی وضاحت ہو چکی ہے، وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے پھرنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور وہ بادل جو بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے بیچ میں مسخر کیے ہوئے، یعنی جتنی بلندی پہ ان کو روکا ہوا ہے وہ وہیں رکے ہوئے، کیا ہے؟ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. पहले तो आप इस आयत पे थोड़ी सी बात समझ लें ताकि आप इसका फिर हुसन नोट कर सकें। ये कुरान पाक की वो आयत है जिसमें एक ही आयत में सबसे ज्यादा कुदरतों का तذکرہ है। कुरान पाक में बहुत सारी आयतें आप पढ़ेंगे, सूरह कसस में पूरी पढ़ेंगे, सूरह अलानाम में पढ़ेंगे, सूरह नहल पूरी नेमतों की सूरत है, लेकिन इस एक आयत को आप घर में जाके काउंट करके देख लीजिएगा कि कितनी ज्यादा निशानी है। आप बाद में गिन के अपने बस लिखेंगे, आसमान जमीन सूरज चांद सितारे पहाड़ सब। आयातुल आयत कहते हैं सूरत को, इस आयत का नाम है। एक कुरान पाक का थोड़ा सा मिजाज अब बताऊंगी, ये मुश्किल बातें, हमारे गेस्ट थोड़े से परेशान ना हो क्योंकि इस बात का रुख पिछले सबक से है। कल आपने बात सुनी दूसरे पारे के पहले सबक पे, आपको ये बात बताया था कि सूरत अल बकरा के दो हिस्से हैं। फर्स्ट हाफ उसका मुखातिब बोलिए माजी के मुसलमान, कौन? यहूद। दूसरे पारे का जो निसफे सानी है, जो 19वें रुकू से लेकर 22 यानी आखिरी पूरे 22 रुकू पे आता है, आजकल हम उसके अंदर से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, पीछे माजी के मुसलमानों की हिस्ट्री थी, अब यहाँ हाल के मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का तरीका दिया जा रहा है। कुरान पाक का अगर आप मजमून देखेंगे ना, तो आपको चार मजमून साथ साथ सूरत बकरा में दिखेंगे। नंबर एक, कुछ आयतें इबादत के बारे में लिख लीजिए। दूसरी, अहकाम के बारे में। अब अगला हिस्सा जो हम पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अहकामात हैं, ठीक है। फिर हलाल और हराम के बारे में आयात में बात होगी, हत्ता के आइली ज़िंदगी यानी जिसको आप माशरती ज़िंदगी कह लें, शोहर बीवी निकाह शादी ये सब कुछ। ये चार मजमून पूरी सूरत बकरा में साथ साथ चलेंगे, क्योंकि आज आप ये पढ़ रहे हैं, कल आप देखेंगे कि आबे आप मजमून बदल जाएगा, रोज़े की बात आ जाएगी, होते होते निकाह की बात आएगी, इद्दत की आएगी, तो बस लोग उलझने लगते हैं कि कुरान में कोई रब्त नहीं है, कुरान पाक में इधर से उधर है। तब आप देखिए कि आप यूं तसव्वुर में लाएं कि जैसे चार धागे की लड़ियां हों, अब एक नीली है, एक पीली है, एक सुरख है, एक सब्ज है। जब वो सीधी होगी तो एक एक का रंग दिखेगा ना। अब आप उसको बुनना शुरू कर दें, जैसे रस्सी को बुनते हैं तो क्या होगा, वो मल्टी किस्म की डोरी हो जाएगी ना, मल्टी किस्म की एक डोरी बन गई। आप कह रहे हैं ये क्या उलझी हुई है, कोई कहेगा अच्छा इसके नीचे से इसको जरा अनवाइंड करो, आप उसको फिर ट्विस्ट करें, तो जब खोलेंगे तो एक सुर्ख लड़ी, एक नीली, एक पीली अलग होगी ना। अब आप इमेजिनेशन मिलाएंगे कि किस तरह की लड़ी है और उसके अंदर बीच में कहीं ना कहीं खूबसूरत फूल है। यह है सूरत अल बकरा, चार मजमून पूरी सूरत में चल रहे हैं। आप पीछे जो थे वो बताएं, अब अगले आपको लिखाऊंगी कि ये लड़ी कौन सी है, ये कौन सी है। बीच में जो फूल है ना, उन फूलों में से एक फूल इस वक्त हमारे हाथ में, जिसको आयतुल आयतैन कहते हैं, सबसे ज्यादा निशानी वाली आयत। और बात नहीं समझ आई तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये देख लीजिए कि इस एक आयत में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करा दिया है। किसी का तारुफ क्या होता है, अक्सर लोग कहीं भी जाएं प्रोग्रामों में कहते हैं तारुफ करा दें, आपका तारुफ करवा दें। मैं कहती हूँ मेरा तारुफ वो है जो मैं बोलूँगी, और करना है ना तो बाद में कीजिएगा जब बात हो जाए जिसके लिए आए हैं। शुरू में सबके लाख के इतने घंटों के लंबी बातें लंबी चौड़ी करने का फ़ायदा क्या, आप कौन हैं, आप कहाँ से पढ़े हैं, आप किसके उस्ताद हैं, किसके शागिर्द हैं, किधर आपका काम है। जो आके बैठे उनको तो ये चाहिए कि आज हमें क्या मिलेगा। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये मिजाज इस आयत में सिखा दिया कि तुम रब को पहचानना चाहते हो, तुम अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को बताना चाहते हो कि अल्लाह को मानो, तो उसको कोई इस कायनात की किताब को पढ़ ले। अब सवाल पैदा होता है कि जब कायनात की किताब को पढ़ने का हुक्म दिया जाता है, तो क्या हम लोगों को ये चीज़ें जो दिखती हैं ये काफिरों को नहीं दिखती? आप ज़रा आयत के ऊपर नज़र डाल के देखिए, मैं सिर्फ बोलती हूँ, आप नंबर्स के साथ देखिए, असमावात, अलर्थ, इख्तलाफ इल्लैल व नहार, फुल्क, फिर आप देखिए कि जो चीज़ें उसमें जाती हैं, बीमा यनफोन नास, फिर मान आसमान से, फिर फाहिया बिहल और दमिनस समाई, फिर आप देखिए बस समिन कुल्ली दापतिन तशरीफ रिया सहाब मुसखरात, और आप देखिए तकरीबन ये 12 चीज़ें बनी हैं। अब आप बताइए कि जिस किताब के अंदर 12 मुख्तलिफ टॉपिक हों, काफिर को भी वो वैसे ही दिखती है जैसे मोमिन को दिखती है, तो आप फिर उसको पढ़ने और पढ़ाने के लिए क्या मुसलमानों को, लोगों को किसी किताब पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी? कायनात से बात करें, यहाँ से हम सबको एक सबक मिलता है, और वो क्या मिलता है कि जब भी लोगों से अल्लाह की बात करें तो कायनात की बात करें पहले। किताबें कोई नहीं पढ़ेगा, आप पढ़ते हैं किसी की बाइबल और तौरात, लेकिन सबज घास मुसलमान को भी दिखती है और काफिर को भी दिखती है। अल्लाह सुबहाना तआला ने इस कायनात में इतना हुस्न बखेरा हुआ है कि जिसको देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है और इंसान सोच पे मजबूर हो जाता है कि ये सब किसने बनाया। क्या हम इस रब के ऊपर लोगों को फोकस नहीं कर सकते? आपके बच्चों के दिल में आप अल्लाह की मोहब्बत डालते हैं? ये देखिए, अब ये सारी पिक्चर्स हैं, अगर मैं आपको एक एक खोल के दिखाऊं, सच बताइएगा ये किसने बनाई? ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये फल फूल पहाड़, ये तो हमने इसको थोड़ा सा एक शक्ल दे दी है ना। आप जरा कायनात में जाके देखें तो सही, यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि अगर आपको इस पढ़ने के बाद थोड़ा सा वक्त मिलता है ना, तो उसको सोने के बाद और अपने घरेलू कामों के बाद अगर इस्तेमाल करें तो नेचर को ऑब्जर्व करें। जब नरम घास आपके पाँव को पड़ती है और जब आप देखते हैं कि किस तरीके से अल्लाह सुबहाना तआला ने इस कायनात के अंदर आपके लिए हुसन बखेरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अरसा नॉर्वे में रहना जो पड़ा, तो नॉर्वे में आपको शायद अंदाज़ा है कि नहीं कि बहुत एक्सट्रीम वेदर है, और हम एक साल में 4 सीज़न देखते हैं, जिसको बिल्कुल, मैं फर्स्ट ईयर जब गई तो मैंने इसको फील किया और मुझे ऐसे लगा कि एक कपड़े के 4 मुख्तलिफ शेड हैं। सर्दियों में वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, बिल्कुल वाइट, जिसको आप विंटर कहने को कह सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो इसको जा जा के देखते भी हैं। लेकिन आप देखिए, हर चीज़ वाइट, ऐसे लगता है बुजुर्गी आ जाती है उसके ऊपर। अगर आप बाहर निकले, कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं दिखती कि जिसको आप देखकर ये कहने पे ना मजबूर हो जाएं कि सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल्अज़ीम। क्योंकि हम सब ने बर्फ़ का एक और ही मंजर सोचा हुआ है ना। जब फर्स्ट ईयर था मेरा नॉर्वे में, तो मैंने कभी इस तरह से क्लोजली देखी नहीं, थोड़ी बहुत अगर देखी भी हो तो वो देखना बिल्कुल फ़र्क होता है। तो मैं बाहर गई तो किसी की साइकिल पड़ी हुई है ना, तो उसके ऊपर एक और साइकिल बन गई है बर्फ़ से। ये देखिए कुछ मंजर। अब ये विंटर है, इसको देखते हुए सोचिए कि इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल-अर्ज़ि वाख्तिलाफ़िल्लैली वन-नहार। दिल खोल के पढ़े, ये कौन बनाएगा? ये तो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ना। आप जरा खुली आंख पे इस बर्फ को जरा छू के तो देखे। मेरे दिल से जो बर्फ को देख के दुआ निकलती थी कि अल्लाह मेरा नाम अमल ऐसा कर दे। सुबह उठते थे यूं, ये बर्फ है ना, ये देखिए। एक दिन जब पहली दफा हम सोए रात को, तो सूखी टहनियां थी, जब बर्फ आती है ना उससे पहले बिल्कुल ब्राउन हो जाता है वो, क्योंकि पत्थर पत्ते उतर चुके होते हैं। जहाँ हम रह रहे थे वो नीचे था, बेसमेंट था, सिर्फ विंडोज से दिखता था। तो बिल्कुल नॉर्मल सोए रात को, जैसे कि सबके होते हैं लकड़ियां पत्थर, और बिल्कुल वीरानी का एहसास है। तो जब सुबह फजर के बाद जरा रोशनी, तो मेरी एकदम जैसे चीख निकल गई कि बाहर क्या हुआ है। तो मैं इस चेयर पे खड़ी होके ना, मैंने वो विंडो में से देखा, अनबिलीवेबल। हमारे घर के आंगन के पीछे जो था, इतनी मोटी मोटी बर्फ की तहें, जैसे ये आप देख रहे थे ये स्टिक्स है, ऐसे लगता है जैसे चीनी चढ़ी हुई है ऊपर। और कैसी क्लोज है, आपको अल्लाह दिखाए, आप जाके देखें, इतनी बारीक क्रिस्टल है, वो यूं यूं यूं, और ऐसे लगता है कि मोतियों की लड़ियां आपने डंडियों के इर्द गिर्द फेर दी हैं। इन नफी खल्क समावाती वल अर्दी वक्ति नाफिल। इस रब की ना कदरी करते हो, इसको छोड़ के कहाँ जाते हो? ये तो सिर्फ हम विंटर देख रहे हैं ना। आप जाएं, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, और आप कहीं भी जाके देख लें कि 4 सीजन्स, आपको स्प्रिंग भी दिखेगा, आपको ऑटम भी दिखेगा। ये कौन करता है? एकदम मौसम चेंज हो जाता है, यकीन करें। उन दिनों में तो दिल नहीं चाहता कि घर के अंदर आए, साइकिल बाहर पड़ी हुई है रात को, तो सुबह तो साइकिल के ऊपर एक और साइकिल बनी हुई है बर्फ की। अगर गाड़ी है तो गाड़ियां, अगर एक गाड़ी 2-3 दिन खड़ी रहे, तो उसकी छत के ऊपर 5-5 6-6 फुट बर्फ, कैसे वो पूरी जितनी वो गाड़ी की एक शेप ही बन जाती है ना। ये कौन करता है? और इस रब की नाकदरी करते हुए इंसान को फिर अपने ऊपर देखना है कि मैं क्या करता हूँ। इस तरह की चीज़ों को खुद भी ऑब्जर्व किया करें और अपने बच्चों के साथ भी ऑब्जर्व करें। देखें कि जितना प्यार इस कायनात को देख के मिलेगा ना, उतना ही इस किताब को देख के मिलता है। आप अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, और कायनात क्या है? अल्लाह का कलाम। ये कॉल है तो वो फेल है। इस तरह की चीज़ें देख कर खुद को भी अल्लाह के करीब करें और अपने बच्चों को भी लेके चलें, फिर देखिए आपको समझ आएगी। और असल बात यह कि नाकदरी होती वहाँ है जहाँ हम खालिक के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते, जहाँ हम ये नहीं देखते कि खालिक जो है वो हमें इतना कुछ देता है, उसकी मानते नहीं। एक ग्लास पानी का कोई आपको ला के दे देना तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई एक वक्त का खाना खिला दे तो थैंक यू कार्ड और फुलां फुलां करते हैं। तब आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ आज खुलासे पे रहेंगे, अगली आयत पे चलते हैं। कुछ चीज़ें इंशाल्लाह इसमें से हम बाद में देखेंगे।